एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स डब्ल्यू कोठाड़ा की इन्फॉर्मेशन एंड द मॉडर्न कॉर्पोरेशन।
हाँ, और ये किताब हमें समझाती है कि आज हम जिस इन्फॉर्मेशन एज में है उसकी कहानी दरअसल शुरू कहाँ से हुई।
बिल्कुल, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं।
और ये विषय सिर्फ टेक इंडस्ट्री या बड़े मैनेजर्स के लिए नहीं है, है ना? हम सब, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में डेटा और इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं।
सही कहा, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑफिस का काम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ही तो है।
तो ये सब आया कहाँ से, कैसे बड़ी कंपनियां और हमारे काम करने के तरीके भी सूचना पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए? आज की बातचीत का मकसद यही है, इस सफर को समझना, कैसे सूचना की भूमिका, उसका रोल बदला और कैसे उसे संभालना कंपनियों के लिए एक जरूरी लक्ष्य, एक गोल बन गया।
बिल्कुल, ये किताब यही दिखाती है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोई साइड की चीज नहीं है। पिछले लगभग 150 सालों में ये धीरे धीरे कंपनियों के चलने का मुख्य इंजन बन गई है।
तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं।
जरूर।
तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जेम्स डब्ल्यू कोठाड़ा। इनकी प्रोफाइल काफी अनोखी है ना?
हाँ बिल्कुल, उनके पास एक तरह का दोहरा अनुभव है। एक तरफ तो उन्होंने IBM जैसी बड़ी कंपनी में 30 साल से ज्यादा काम किया, सीनियर रिसर्चर, कंसल्टेंट, मतलब जमीनी हकीकत जानते हैं,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और दूसरी तरफ वो एक प्रॉपर इतिहासकार हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में PhD हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, बिजनेस, समाज, इन सब के रिश्तों पर क्या कहते हैं, 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं।
वाह, 30 से ज्यादा
जी। तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, उन्होंने कंपनियों को टेक्नोलॉजी अपनाते हुए, बदलते हुए नजदीक से देखा है, बल्कि उसमें मदद भी की है।
तो वो सिर्फ बाहर से कमेंट्री नहीं कर ले, वो मैदान में खिलाड़ी भी रहे।
एग्जैक्टली, यही चीज उनके विश्लेषण को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है, जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक गहराई, दोनों का मेल।
बिल्कुल, इससे उनकी बातों में वजन आता है।
तो अब आते हैं किताब पर, इन्फॉर्मेशन एंड द मॉडर्न कॉर्पोरेशन। ये है क्या आखिर? ये दरअसल अमेरिकी बिजनेस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच के करीब 150 साल के रिश्ते की कहानी है, 1870 से शुरू होकर करीब 2000 के दशक तक,
डेढ़ सदी।
हाँ, और कोठाड़ा का मेन पॉइंट ये है कि ये दोनों चीजें, बिजनेस और टेक्नोलॉजी, अलग अलग नहीं बढ़ी, वो साथ साथ विकसित हुई हैं, एक दूसरे पर असर डालते हुए।
को इवॉल्व्ड जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, को इवॉल्व्ड, जैसे दो दो साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं।
19वीं सदी के अंत में जब अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां बनने लगी, रेल रोड, बड़े रिटेलर्स, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई।
क्या समस्या?
इतनी सारी जानकारी को संभालना।
सोचिए, पेरोल, इन्वेंट्री का हिसाब, सेल्स के आंकड़े, सब कागज पर, और उसका ढेर लगता जा रहा था।
बाप रे।
कोठाड़ा ने इसे नाम दिया कागजी कार्रवाई का संकट, पेपर वर्क क्राइसिस।
अच्छा, पेपर वर्क क्राइसिस, ये दिलचस्प है।
हाँ, और यही संकट वो चिंगारी थी जिसने इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की जरूरत पैदा की। कंपनियों को लक्ष्य बनाना पड़ा कि इस जानकारी को कैसे संभाला जाए।
तो किताब का लक्ष्य यही दिखाना है कि कैसे हर नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो टाइपराइटर हो या फाइलिंग कैबिनेट,
हाँ, या बाद में पंच कार्ड मशीनें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, PC,
इन सब को कंपनियों ने इसलिए नहीं अपनाया कि वो फैंसी थी,
हाँ,
बल्कि इसलिए कि वो किसी असली बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी।
एग्जैक्टली, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, और फिर टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को और कॉम्प्लेक्स होने में मदद की।
एक साइकिल जैसा बन गया ना?
बिल्कुल, और इसी पूरी प्रक्रिया में इन्फॉर्मेशन का रोल बदलता गया, सिर्फ रिकॉर्ड रखने से बढ़कर वो कंपनी की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति बन गई, और उसे सही ढंग से मैनेज करना सबसे बड़ा लक्ष्य।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं किताब के सफर में।
हाँ, देखते हैं ये विकास कैसे हुआ।
पहला हिस्सा तो उन दिनों की बात करता है जब कंप्यूटर थे ही नहीं। शुरुआती कंपनियां किस चीज पर चलती थी? जमीन, मशीनें, लोग, है ना?
हाँ, फिजिकल एसेट्स और लेबर, सूचना वो तो बस बही खातों में दर्ज होती थी, साइड का काम था।
लेकिन जैसे जैसे रेल फैली, कंपनियां बड़ी हुई, वो पेपर वर्क क्राइसिस आ गया।
यही पर आई पहली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। आज हमें ये बहुत साधारण लगती हैं, पर सोचिए उस जमाने के लिए।
जैसे
टाइपराइटर, इससे कम्युनिकेशन तेज और साफ हुआ। कार्बन पेपर, एक साथ कई कॉपी बनाने के लिए, और वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट,
हाँ वो दराजों वाली अलमारी,
उसने कागजों को ऑर्गेनाइज करने का और जरूरत पड़ने पर ढूंढने का तरीका दिया। ये छोटी चीजें थी पर इन्होंने ऑफिस के काम करने का ढंग बदल दिया, सूचना प्रबंधन की नींव रखी। यहाँ लक्ष्य साफ था, कागजों के ढेर में गुम नहीं होना है।
ठीक है, फिर आया अगला दौर करीब 1920 से 1950।
हाँ,
इस समय मैनेजमेंट ने सोचना शुरू किया कि काम को और एफिशिएंट और साइंटिफिक कैसे बनाया जाए। टेलरिज्म का जमाना।
अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट।
अब लक्ष्य सिर्फ कागज संभालना नहीं था बल्कि सूचना का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेना, काम तेज करना था। और इस दौर की हीरो थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन।
पंच कार्ड?
हाँ,
वो छेद वाले कार्ड।
हाँ वही, उनपे डेटा रिकॉर्ड होता था और मशीनें उन्हें पढ़ सकती थी। IBM जैसी कंपनियां इसी से बड़ी बनी।
अच्छा, बीमा कंपनियां, सरकारें जैसे जनगणना, सोशल सिक्योरिटी, इन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करना सीखा। यहाँ सूचना का रोल और बढ़ा।
लेकिन असली क्रांति तो कंप्यूटर के आने से हुई होगी, 1950s, 60s।
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवैक जैसे, ये बहुत बड़े, बहुत महंगे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां इन्हें किसी जादुई चीज की तरह नहीं देख रही थी।
तो फिर
उनका शुरुआती लक्ष्य बहुत प्रैक्टिकल था। जो बोरिंग रिपीटेटिव काम है जैसे पेरोल बनाना, बिल भेजना, उन्हें ऑटोमेट कर दो बस।
अच्छा, सिर्फ ऑटोमेशन?
हाँ, और ये काम अक्सर एक अलग थलग डिपार्टमेंट करता था, डेटा प्रोसेसिंग DP डिपार्टमेंट, जिसे मजाक में ग्लास हाउस कहते थे।
ग्लास हाउस क्यों?
क्योंकि वो लोग अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ शीशे के कमरों में बाकी कंपनी से थोड़े कटे कटे रहते थे। एक्सपर्ट्स का इलाका था वो।
समझ गए। लेकिन कॉट्राडा कहते हैं कि भले ही इरादा सिर्फ ऑटोमेशन का था, इस टेक्नोलॉजी ने अंदर ही अंदर कंपनी के स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर दिया था।
बिल्कुल, सेंट्रलाइज्ड DP डिपार्टमेंट ने जानकारी को कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट तो किया, लेकिन साथ ही इसने पहली बार दिखाया कि मशीनें कितना ज्यादा डेटा संभाल सकती हैं। इसने भविष्य के लिए जमीन तैयार की। सूचना अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थी, वो प्रोसेस होने लगी थी।
ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है, फोकस ग्राहक पर आता है।
हाँ, 1970 और 80 के दशक में कंपनियां सोचने लगी, क्या हम कंप्यूटर से ग्राहकों को बेहतर समझ सकते हैं? यहीं से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS का आइडिया आया।
MIS मतलब ऐसा सिस्टम जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करे।
हाँ वही। हालांकि कोटाडा बताते हैं कि शुरुआती MIS उतने कामयाब नहीं हुए। वो या तो बहुत ज्यादा डेटा देते थे जो समझ नहीं आता था,
इन्फॉर्मेशन ओवरलोड टाइप,
बिल्कुल, या फिर वो जानकारी नहीं देते थे जिसकी मैनेजर्स को सच में जरूरत थी। लेकिन यहाँ लक्ष्य बदल रहा था, अब इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बाहर की दुनिया यानी कस्टमर्स को समझने के लिए करने की कोशिश हो रही थी।
इसी दौरान सप्लाई चेन में भी बड़ा बदलाव आया।
हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सामान बनने से लेकर ग्राहक तक पहुँचने की पूरी कड़ी,
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI,
ये क्या था?
इससे कंपनियां अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सीधे कंप्यूटर के जरिए जुड़ सकती थीं। ऑर्डर भेजना, इनवॉइस लेना, सब इलेक्ट्रॉनिकली।
अरे वाह,
वॉलमार्ट, टोयोटा जैसी कंपनियों ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया, अपनी सप्लाई चेन को इतना एफिशिएंट बना लिया कि वो कंपटीशन में बहुत आगे निकल गईं। यहाँ लक्ष्य था पूरी सप्लाई चेन को तेज और ज्यादा कुशल बनाना।
और फिर आया वो गेम चेंजर, पर्सनल कंप्यूटर, PC।
हाँ,
1980s में जब PC ऑफिस में आए और खासकर जब VisiCalc और लोटस 1-2-3 जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम आए।
स्प्रेडशीट, हाँ वो तो क्रांति थी।
बिल्कुल, अब कोई भी मैनेजर या एनालिस्ट अपनी डेस्क पर बैठकर वो एनालिसिस कर सकता था जिसके लिए पहले बड़े DP डिपार्टमेंट पर निर्भर रहना पड़ता था।
इसे एंड यूजर कंप्यूटिंग कहा गया है ना?
सही। इसने इन्फॉर्मेशन की पावर को सेंट्रलाइज्ड ग्लास हाउस से निकालकर आम कर्मचारी के हाथ में दे दिया। सूचना का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ।
लेकिन इसके अपने चैलेंज भी आए होंगे।
जाहिर है, अब हर कोई डेटा बना रहा था तो सिक्योरिटी, डेटा क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब मुद्दे बन गए। डेटा बिखर गया।
हाँ, ये तो होता है।
इसी बिखराव को समेटने के लिए बाद में बड़े ERP सिस्टम आए, SAP, Oracle जैसे। कोशिश थी कि कंपनी का सारा डेटा फिर से एक जगह इंटीग्रेट हो,
और साथ में इंटरनेट, ईमेल, इंट्रानेट।
हाँ, इन सब ने कंपनियों को नेटवर्क में बदल दिया। अब बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन की नहीं, नॉलेज की होने लगी। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बने।
नॉलेज मैनेजमेंट मतलब
कंपनी के अंदर जो बिखरा हुआ ज्ञान और अनुभव है उसे कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे शेयर किया जाए ताकि वो सबकी संपत्ति बन सके, ये नया लक्ष्य था।
और किताब का आखिरी हिस्सा इन सब बातों को समेटता है।
हाँ, वो बताता है कि आज की कामयाब कंपनियां इन्फॉर्मेशन को कैसे देखती हैं। वो इसे सिर्फ एक ऑपरेशनल जरूरत नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार मानती हैं।
रणनीतिक हथियार।
उनका लक्ष्य होता है इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कॉम्पिटिशन में स्थायी बढ़त हासिल करना, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
और कॉडाडा ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ चुनौतियां हमेशा रहती हैं।
बिल्कुल, डेटा की क्वालिटी, उस डेटा से सही मतलब निकालना, और सबसे बड़ी चुनौती लोगों को और कंपनी की संस्कृति को बदलना, ये हमेशा मुश्किल रहा है।
तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से कुछ बड़े सबक या थीम्स क्या निकलते हैं?
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, इन्फॉर्मेशन अब एक रणनीतिक संपत्ति है, स्ट्रेटेजिक एसेट। ये सिर्फ काम चलाने का जरिया नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन में आगे रहने का मुख्य हथियार है।
हाँ, पहले कंपनियां अपनी फैक्ट्री या मशीनों पर गर्व करती थी, आज वो अपने डेटा और उसे समझने की काबिलियत पर ज्यादा जोर देती हैं। भारत में ही देखिए कितने नए स्टार्टअप सिर्फ डेटा के बेहतर इस्तेमाल के दम पर बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं।
बिल्कुल। दूसरा सबक, कंपनियां और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ साथ विकसित हुए हैं, कोई इवोल्यूशन वाली बात।
हाँ, एक दूसरे को पुश और पुल करते हुए।
बिजनेस की जरूरतें नई टेक्नोलॉजी लाती हैं और टेक्नोलॉजी बिजनेस को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये साइकिल चलता रहता है। जैसे भारत में UPI पेमेंट की जरूरत ने उसे जन्म दिया और अब UPI नए नए बिजनेस मॉडल्स को संभव बना रहा है।
तीसरा पॉइंट, सूचना का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन।
हाँ, पहले जानकारी कुछ एक्सपर्ट्स या टॉप मैनेजमेंट तक सीमित थी। PC ने, फिर इंटरनेट ने इसे आम कर्मचारी तक पहुंचाया।
इसने कंपनी के अंदर पावर डायनामिक्स को बदला है ना, पारंपरिक हायरार्की को चुनौती दी है। हम अपने ऑफिसेज में भी ये महसूस करते हैं, जिसके पास सही जानकारी होती है उसकी सुनी जाती है।
सही कहा। और एक और मजेदार थीम, ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की शिकायत हम आज करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है।
अच्छा।
हाँ, कोटाडा दिखाते हैं कि 1900s के मैनेजर्स भी कागजों के ढेर से उतने ही परेशान थे। चुनौती हमेशा से यही रही है, इन्फॉर्मेशन के सैलाब में से काम की चीज कैसे निकालें, शोर से सिग्नल को कैसे अलग करें।
ये तो बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ कंपनियों पर नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है, सोशल मीडिया, न्यूज।
बिल्कुल। और आखिरी एक बुनियादी सच, कंपनियां टेक्नोलॉजी इसलिए अपनाती हैं क्योंकि वो उनकी कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं।
हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नई या कूल है।
टाइपराइटर आया क्योंकि हाथ से लिखना मुश्किल था, स्प्रेडशीट आई क्योंकि बड़े कैलकुलेशन मुश्किल थे, आज AI आ रहा है क्योंकि बिजनेस की कुछ खास जरूरतें हैं। सिर्फ चमक के पीछे भागने से बात नहीं बनती, असली सवाल है क्या ये हमारी कोई जरूरत पूरी कर रही है।
बिल्कुल।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या कहिए ऐसे विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ, कुछ कोट्स टाइप बताइए।
जैसे एक ये है कि भविष्य की कंपनी की पहचान इससे नहीं होगी कि वो क्या बनाती है, बल्कि इससे होगी कि वो इन्फॉर्मेशन को कितनी असरदार तरीके से प्रोसेस करती है और उसे वैल्यू में बदल पाती है।
ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी हो गया इन्फॉर्मेशन को वैल्यू में बदलने का प्रोसेस।
बिल्कुल। एक और चेतावनी जैसी है, जो कंपनियां IT को सिर्फ खर्चा मानती हैं, स्ट्रैटेजिक निवेश नहीं, वो ऐसे मार्केट में टिक नहीं पाएंगी जहां इन्फॉर्मेशन की स्पीड और एक्यूरेसी ही कामयाबी तय करती है।
सीधा संदेश है, IT और डेटा को गंभीरता से लो वरना पीछे रह जाओगे।
हाँ, और ये ऑब्जर्वेशन भी देखिए, शायद किसी भी मैनेजमेंट थ्योरी या ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग से ज्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग को डेमोक्रेटाइज किया है।
अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी ने अनजाने में ही पावर को नीचे तक पहुंचाया है, शायद पॉलिसी से भी ज्यादा।
और एक मेरा पसंदीदा, टेक्नोलॉजी बदलने में कामयाब वही कंपनियां होती हैं जो समझती हैं कि ये सिर्फ नया सिस्टम लगाना नहीं है बल्कि ये फंडामेंटली कंपनी की संस्कृति को बदलने का काम है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। असली खेल टेक्नोलॉजी का नहीं, लोगों का है, कल्चर चेंज का है।
बिल्कुल। अगर लोग तैयार नहीं है तो बेस्ट टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है।
तो इन सब बातों का हमारे लिए, मतलब आम लोगों के लिए क्या मतलब है, हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
पहली चीज तो ये कि आज के दौर में चाहे हम कुछ भी करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बढ़ाना बहुत जरूरी है।
सूचना साक्षरता मतलब?
मतलब ये समझना कि जानकारी कहाँ से आ रही है, उसका मतलब क्या है, वो भरोसेमंद है या नहीं, और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे समझना और सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, जब हम किसी कंपनी या संगठन को देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि वो क्या बनाते या बेचते हैं, ये भी देखें कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं।
अच्छा, ये कैसे पता चलेगा?
थोड़ा अंदाजा लग सकता है। क्या वो डेटा को लेकर गंभीर लगते हैं? क्या उनके कर्मचारी जानकारी आसानी से शेयर कर पाते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करते दिखते हैं? इससे उनकी असली ताकत या कमजोरी का पता चल सकता है।
और कोटाडा का वो लंबा नजरिया याद रखना चाहिए।
हाँ, कि तकनीकें बदलती रहेंगी पर जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना हमेशा जरूरी रहेगा।
और तीसरी बात, जब भी कोई नया टूल या सिस्टम आता है ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में,
हाँ,
तो ये याद रखें कि उसे अपनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखना नहीं है, ये अपनी आदतें, अपने काम करने का तरीका बदलना भी है। ये एक सोशियो टेक्निकल चेंज है।
बिल्कुल, इसमें थोड़ा सब्र और सीखने की इच्छा लगती है। सिर्फ बटन दबाना सीखना काफी नहीं होता।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज की ये जो डेटा ड्रिवन दुनिया है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये 150 साल से ज्यादा के क्रमिक विकास का नतीजा है। इन्फॉर्मेशन और उसे मैनेज करने के टूल्स ये बिजनेस के DNA में बुने हुए हैं।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैसे फाइलिंग कैबिनेट जैसी साधारण चीज भी अपने जमाने की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी।
हाँ, ये याद दिलाता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे हाईटेक चीज ही सबसे ज्यादा असरदार हो।
बिल्कुल, कई बार सिंपल सॉल्यूशंस भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस इतिहास को समझने से हम आज के AI हाइप को भी शायद ज्यादा संतुलित नजरिए से देख सकते हैं।
सही कहा, बुनियादी चुनौतियां काफी हद तक वही हैं, जानकारी को समझना, उसे शेयर करना और उससे कुछ वैल्यू क्रिएट करना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।